ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज के इस बंद कर दो उसको 6 सितंबर के इस प्रेमांजलि कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जैसे आपको पहले भी बताया है कि प्रेमांजलि कार्यक्रम आप लोगों को खुशियां देने के लिए है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। जब आदमी शरीर से कष्ट भोगता है तो उसे भगवान की कथा भी आनंद दे सकती है। शरीर का कष्ट जो है वो कोई भी मिटा नहीं सकता, हम लोग कोशिश करते हैं खाली, लेकिन शरीर का दर्द मिटाना या रखना वो तो भगवान के हाथ में है। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, हम केवल प्रयास कर सकते हैं। हरी कथा इतनी शक्तिशाली है कि वो सबसे बड़ा दर्द भी मिटा सकती है। हरी कथा ऐसी वस्तु है, हमारे परम गुरुदेव प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो शरीर के स्तर से व्यक्ति को उठा सकती है, शरीर के स्तर से, मन के स्तर से, बुद्धि के स्तर से, अहम के स्तर से उठाकर आत्मा के स्तर पर स्थित कर सकती है और आत्मा के स्तर पर जो आनंद है उसको अनुभव करा सकती है, उसको चखा सकती है। चाहे भगवान का नाम हो या भगवान की लीला हो या भगवान के रूप का दर्शन हो या भगवान के धाम की यात्रा हो, इसमें से कुछ कोई भी वस्तु से जब जीव का संबंध होता है तो ये लौकिक स्तर से जीव ऊपर उठ जाता है, दिव्य स्तर पे स्थित हो जाता है और फिर उसको दिव्य स्तर का जो आनंद है उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए शरीर का दर्द और पीड़ा किसी को मिटानी है, मन की या परिवार की पीड़ा को मिटाना है तो एकमात्र औषधि है हरी कथा, हरी नाम, हरी धाम और हरी दर्शन। तो इसलिए हम प्रेमांजलि कार्यक्रम रखते हैं क्योंकि इससे कुछ हद तक भी आपका अपना दर्द हम भूल जाएं तो भी हमारा कार्यक्रम सफल है। कुछ समय के लिए भी अगर आप भूल कर भगवान की स्मृति में आनंद का अनुभव करें तो ये बहुत बड़ी बात है। हम सब लोग इसी की अभिलाषा करते हैं कि कुछ क्षण क्यों ना हो अगर आनंद की बौछार हो भगवान के विषय में तो हमारा जीवन और सबका जीवन धन्य है। अभी आपने इतनी सुंदर क्या कहते हैं उसको, फिल्म देखी है ना कालिया की, आप सब जानते हैं इस कथा को, लेकिन हम लोग उस कथा को अनंत बार सुनने पर भी बोर नहीं होते है ना। दुनिया की कोई कहानी हो, कोई प्रेमिका की हो कहानी हो, एक आध बार सुन लिया बस हो गया, नहीं सुनाओ ऐसे बोलते हैं। बच्चे लोग भी हमारे इतने होशियार होते हैं, अरे पापा ये तो सुना चुके हो दूसरी सुनाओ। लेकिन भगवान की कथा ऐसी है कि आप एक ही कथा हजार बार दोहराओ, कभी आपको वो कहते हैं ना क्या क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, हाँ उबते नहीं आप, उब नहीं जाएंगे उससे। तो ये कथा ठाकुर जी की ऐसी है कि उसके पहले तो गरुड़ की कथा आती है, गरुड़ जी और कालिया नाग जो है ना वो सब अदिति के पति जो कश्यप मुनि थे इनकी पत्नी थी कद्रु, ये कद्रु के सब बच्चे हैं जो सांप के योनि में आए। तो उसमें कालिया भी था, उसमें अरुण जी भी, एक और माता है उनकी विनीता, विनीता विनीता के पुत्र वैनतेय यानी गरुड़ जी और कद्रु के सब सांप, उसमें बलराम जी भी, कद्रु जो है वो रोहिणी बनकर आती है कृष्ण लीला में। तो इसका इतिहास है। तो गरुड़ जी का और कालिया का जो एक बार युद्ध हो गया, इतना भयंकर युद्ध हो गया, भयंकर युद्ध हो गया कि गरुड़ जी हावी हो गए कालिया पर, कालिया परास्त होने लगा और भागने लगा तो जमुना में जाके छुप गया। क्योंकि तो एक दिन गरुड़ जी ने सौबरी मुनि का जमुना के जल के अंदर अपराध किया था, तो सौबरी मुनि किसने शाप दिया गरुड़ जी को, क्योंकि वो क्या है, वो गरुड़ जी वो जमुना जी में आकर मछली खाया करते थे। तो वो मछली गए सब मुनि के पास, महाराज जी हमारा वंश खत्म हो रहा है, ये गरुड़ जी आके खा जाते हैं हमको। तो उन्होंने गरुड़ को शाप दिया कि आप जमुना जी में कभी आओगे तो आपका अच्छा नहीं होगा, तो वो बंद हो गया आना। लेकिन चौबरी मुनि का उसका पाप लग गया, क्योंकि उन्होंने वैष्णव का अपराध किया, तो उनका आगे पतन हो गया, वो दूसरी कहानी है। तो ये कालिया युद्ध में भागते भागते जमुना में क्यों आया, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पर गरुड़ को आना मना है, यहाँ पर गरुड़ जी नहीं आ सकते, तो मैं यहाँ पर अभय हूँ, मुझे गरुड़ जी यहाँ पर नहीं आके मार सकते। लेकिन जमुना जी के दह में जब वो बैठा तो उसका विष जो है वो इतना भयंकर फैल गया, इतना भयंकर फैल गया कि कई फुट तक आकाश में उसकी बाष्प होता ना, वो मतलब धुआं विष का, उसमें से कोई पंछी भी गुजरेगा तो उसके धुएं से स्पर्श होकर मर जाएगा, इतना भयंकर विष। मतलब जल का स्पर्श करने की बात दूर ही रही, आकाश से कोई उड़ रहा है काली देह के ऊपर से, तो विष की जो धुआं है बाष्प है उसके वजह से स्पर्श होने से भी पंछी मरकर गिर जाते थे। सारी सृष्टि खत्म हो गई, पेड़ खत्म हो गए, वेली खत्म हो गई, जितनी भी जीव सृष्टि थी, जो मछली, सब लोग खत्म हो गए। इतनी दहशत मच गई ब्रज में कि काली देह के पास कोई जाता नहीं है, और काली अपना राज वहां जमा कर बैठा था अपनी पत्नियों के साथ, बालकों के साथ। उतने में वहां पर क्या हुआ, भगवान के सब सखा लोग आए, गाय चराते चराते आ गए, उनको प्यास लग गई, थोड़ा सा गर्मी का मौसम था, गर्मी का मतलब ऐसे थक गए थे बेचारे वो, तो सबने कहा रहे काली देह में जाकर जमुना जी का पानी पियेंगे तो थकान भी मिट जाएगी और अच्छा लगेगा। जैसे ही गायों ने और बछड़ों ने और ग्वाल बालों ने पानी पिया, वो सब उधर ढेर हो गए। उसके पीछे पीछे कृष्ण आ गए, उन्होंने कहा अरे सब ग्वाल बाल तो समाप्त खत्म हो गए। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि को सबके ऊपर निहारा, ऐसे उनकी दिव्य दृष्टि गिरते ही सब जीवित हो गए। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे काली देह में बहुत विष है, क्या करेंगे अभी, हमारी गैया पानी कहाँ पिएंगी। तो कृष्ण को समझ में आया कि काली ने बहुत ज़्यादा दहशत मचा लिया यहाँ पर। तो वहाँ पर कदम का एक पेड़ है, अभी भी आप जाएंगे तो कदम का पेड़ है, हाँ बहुत दिव्य वृक्ष है वो। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि वो जो वृक्ष है, वो जब समुद्र मंथन हुआ था ना, बहुत पहले समुद्र मंथन सत्ययुग में हुआ था, तो सत्ययुग के समय जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं को और दानवों को जब ये अमृत प्राप्त हो गया ना, तो फिर युद्ध छिड़ गया उनके अंदर, हम पहले लेंगे, हम पहले ले, हम पहले लेंगे। तो उसमें में गरुड़ जी वो कलश लेके उड़ गए आकाश में देवताओं के और दानवों के युद्ध में, और ऐसा लिखा है कि वो पहले आकर ये वृक्ष के ऊपर विश्राम किया उसने, वो गरुड़ का हाथ में वो कलश अमृत का, और वो उस पेड़ पदम पे पेड़ पर बैठ गए और कुछ छींटे कदम के उस पेड़ पर डाले उन्होंने, ये जानते हुए कि द्वापर में श्री कृष्ण आएंगे और यहाँ लीला करेंगे, तो ये पेड़ का जिंदा होना जरूरी है। इस कारण वो वृक्ष एक ही जीवित था। दूसरा कारण बताते हैं कि वो मृत भी हो गया था, लेकिन भगवान के चरण का स्पर्श होते ही उसमें वापस चेतना आ गई। दोनों कारण सही है, कोई बात नहीं। तो भगवान उस पेड़ पर चढ़े कदम के, और एकदम ऊंची डाली पे चढ़े, और जैसे होता है ना पहलवान, वो अपना फेटा निकालता है और कमर को बांधता है ना ऐसे, और वो अपने बाजुओं को ताल मारते हुए छलांग लगा दिया पानी के अंदर। इसके बीच में एक कहानी आती है, ये करने के पहले जब सारे ग्वाल बाल वापस जीवित हो गए, तो उन्होंने गेंद के, भगवान को भी पता है ना कि अभी कालिया अंदर है, उसको तो दमन तो करना है उसको, या तो मार डाला है, लेकिन बहाना क्या होगा, क्या बहाना होगा। तो उन्होंने गेंद खेलना आरंभ कर दिया, तो श्रीदामा अपने गेंद निकाले और श्रीदामा ने गेंद खेलना शुरू किया, बहुत देर गेंद खेले। हाँ, तो वो भगवान ने जानबूझकर जब उनके हाथ में गेंद आई तो बहुत दूर फेंकी उसको, वो सीधे जमुना जी में गिर गई। अभी श्रीदामा जी रोने लगा, अरे मेरी गेंद दो। तो भगवान कहते अरे वो तो जमुना जी में दूर गई है, मैं दूसरी दूंगा आपको, नई गेंद दे दूंगा। तो श्रीदामा बोलता है नहीं नहीं मुझे मेरी ही गेंद चाहिए। बच्चे होते ना, बच्चे कैसे होते, आप दो नई गेंद देंगे, बोले नहीं दो गेंद अपने पास रखो, मेरी गेंद मुझे वापस दे दो। बहुत सारी बहस हो गई, तो श्रीदामा ने जिद किया, नहीं मुझे मेरी ही गेंद चाहिए। थोड़ा ठीक है, तो सीधे भगवान कदम के पेट पर चढ़ गए, वहां से छलांग लगाई। और जब छलांग मारने वाले थे तो सीधा में बोलता रो रो के, नहीं 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 गिरने चाहिए, गिरने चाहिए, तुम जल में मत गिरना, उधर तो काली काली का देह है, उधर काली आपको काट लेगा, अरे मत जाना मत जाना। तब तक तो छलांग मार लिया उसने, तो बहुत पछताया सीधा माँ, बहुत रोया, अरे मैंने गलती किया, ये गेंद के लिए मैंने ठाकुर जी को जल में गिराया, अरे रे रे रे। और फिर सब लोग एकदम दुख में आ गए, एकदम बहुत सारी परेशानी आ गई, क्योंकि पानी उथल पुथल हो रहा है, हाँ बीच में हरा रंग का पानी आ रहा है, विष, बीच में लाल रंग का खून निकल रहा है, क्योंकि पानी के अंदर जब भगवान ने छलांग लगाई तो भगवान का ये साहस देखकर काली को बहुत गुस्सा आया, बोल रहे मेरे देह में घुसने का किसकी हिम्मत नहीं है, एक मनुष्य के बालक की इतनी हिम्मत, छोटे से बालक की, कि मेरे देह में घुसकर छलांग लगा के पानी का उथल पुथल कर दे। तो वो बहुत गुस्से से बाहर आया, तो भगवान ने उसको युद्ध करना शुरू किया। तो उसने क्या किया, अपना वो होता ना वो सांप का अंग लंबा होता ना बहुत ऐसे, तो उसने गोल गोल करके भगवान को उसमें कस लिया और कस के और कसने लगा ताकि कस के ही उनको मार दें। तो भगवान एकदम छोटे से हो गए, मतलब इतने थे तो एकदम चींटी के साइज के हो गए, और तुरंत वो छला वो कस लिया था उसमें से बाहर निकल गए। फिर पीछा किया उसने, फिर भगवान ने एक एक फन पे मुक्का मारा उसके, तो बहुत दर्द होगा उसको, बहुत पीड़ा हो गई, क्योंकि वो तो बालक है लेकिन वो तो कृष्ण है ना, उनका एक मुक्का मतलब कोई हमारे लिए और किसी गोपी के लिए तो एक गुलाब का फूल जैसा है वो, लेकिन कालिया के लिए तो वो वज्रघात है, वज्राघात। तो एक एक मुक्का मारने से उसके अंदर इतनी पीड़ा हुई कि खून बहने लगा, विष भी बहने लगा, फिर काफ़ी मुठभेड़ हुई पानी में, क्या कहते हैं ना उसको, पीछा करना शुरू हुआ, इधर गए उधर गए, देखा ना आपने कितना भयंकर, वो इतना भयंकर कैसे दिखाएंगे, ये तो इसका लिमिट है ना, उस मर्यादा है, कितना दिखाएंगे इसमें, वास्तव में कितना भयंकर हुआ रहेगा वो, कितने फन थे उसके अंदर, सब विष से भरे हुए थे, हाँ आग उगल रहा था वो, खून आग और विष उगल रहा था, काटने की कोशिश कर रहा था बालक को ख़त्म करने के लिए। तो अचानक वो जमुना जी के जल के ऊपर ऐसा खून आया, तो उतने तक तो खबर पहुंच गई, तो नंद बाबा यशोदा माई भी आ गए सब लोग, हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भाग भाग के आ गए, अरे बालक हमारा संकट में, मैया अंदर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो रोक रहे हैं उसको। मैया बोले नहीं नहीं नहीं, वो अगर जा रहा है तो मैं भी जा रही हूँ, मुझे जिंदा रहने की कोई इच्छा नहीं है, देख रहे बालक सांप के फन में फंसा हुआ है, गुजर जाएगा वो, बोले मुझे जिंदा नहीं रहना है। सब लोग को पकड़ रहे भैया, मैया मत जाना, बलराम जी बोल रहे मत जाना, सब लोग रो रहे हैं, बाबा भी रो रहे हैं, बालक भी रो रहे हैं, क्यों हमने गेंद करी, इतना जिद किया, इतना बड़ी भगदड़ मच गई, सब लोग इतने परेशान हो गए। ऊपर से उसमें क्या हो रहा है, खून ऊपर आ रहा है पानी के, और चिंता हो गई, भाई किसका खून है ये, मेरे बालक का है कि कालिया का है। और उतने बहुत सारे चिंता के बाद में अचानक काली के सारे फन जो है वो ऊपर आ गए, और भगवान ने ऐसी छलांग लगाई उसके ऊपर, और वो सर पे ऊपर आ गए काली के। उसकी भी एक छोटी सी कहानी है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, तुरंत उसका वध क्यों नहीं कर दिया। हाँ वो राजा रानी और गोपियां जो है ना, वो मिलकर भगवान को नृत्य सिखाती है, नृत्य नाचना सिखाती है। तो इन्होंने बहुत सारा नाटक करके फिर सीख लिया उनसे, राजा रानी का संग चाहिए ना, तो वो जानबूझ के वो सिखाती थी, उसको उल्टा ही पैर डालते थे वो, तो अधिक देर क्लास चले उनकी, है ना, बहुत होशियार है वो, एक झटके में सब सीख सकते हैं, लेकिन जानबूझ के गलत कदम डाल रहे हैं। तो राधा रानी बोल रहे, अरे ऐसे नहीं, मेरे को ऐसे बताया था, तो गलत क्यों डाल रहा है, फिर बताएगी तो फिर गलत डालेगा, फिर वो बोलेगी अरे ऐसे नहीं डालना है, ऐसे पैर डालना है, ये ताल है इधर, ये पैर ऐसा घुमाना है। बहुत देर बाद उसको समझ में आता है कि अरे तो वो मुझे उल्लू बना रहा है, जानबूझ के वो जो उसकी क्लास चल रही है ना, वो लंबी चले, ज़्यादा संग मिले, इसलिए वो गलत गलत कर रहा है, बड़ी गुस्सा करती है वो, तो फिर सीधा कर देते हैं। तो कुछ दिन के बाद में ऐसे आए और नृत्य करने लगे, तो गोपियाँ बोले अरे हमसे हमसी हमारी जो श्री जी है उनसे ही सीख रहे हो सब कुछ, सब सीखा उनसे ही है, और इतना इतराते क्यों, इतना क्यों गर्व कर रहे हो। तो बोले ये तुम्हारे श्री जी ने सिखाया नहीं, ये मेरा खुद का है ये जो नृत्य है ये मेरा खुद का प्रोडक्शन है, ये मैंने निर्माण किया है इसका। तो बोले इतना गर्व है तो कुछ अद्भुत करके दिखाओ। सब लोग ये दिखाते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, अगर तुम्हें इतना गर्व है अपने खुद के नृत्य के ऊपर तो कुछ गजब का नृत्य दिखाओ। तो भगवान के मन में थी कि गोपियों को गजब का नृत्य दिखाएंगे। हाँ, गजब का मतलब कैसे? आम तौर पे कैसे होता है, हम सब लोग जमीन पे नाचते ना, स्टेज बनाते हैं, पत्थर का हो या मिट्टी का हो या जमीन पर ना, जो सख्त होती है ना। अभी मैं यहाँ पर नाच कर सकता हूँ, जल में नाच कर सकता हूँ क्या? जल थोड़ी सख्त होता है, जल में पैर डालते जाए अंदर चला जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे जगह नृत्य करूँगा जो सख्त है ही नहीं, हिलने वाला है। हाँ, तो वो कार्य के फन पे चढ़ गए, और कैसे, एक पे पैर दिया तो वो नीचे जाता था, फिर दूसरे में पैर दिया दूसरा फन नीचे जाता था। ऐसा नहीं कि वो एक जगह खड़ा है, उसके सारे सर एक जगह पर है और वो नाच रहा है अच्छी तरह से, ऐसा नहीं हो रहा है। जिस पे पैर रख रहा है वो नीचे दब रहा है, और उसके मुंह से जो है वो विष और अग्नि निकल रही है, खून निकल रहा है, और निर्बल हो रहा है वो, दुर्बल मतलब वो बल खत्म हो रहा है उसका। सांप का बल किस में होता है? विष में होता है ना। पैर रख दिया तो वज्राघात हो गया। अरे वो पैर जो है, वो जो पैर चलते थे ना नंगे पैर, तो गोपियां रोया करती थी घर पे, अरे रे 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 हमारे कोमल मक्खन जैसे पैर वाले बाल गोपाल मट्टी में चल रहे हैं तो कितने कंकड़ पत्थर कांटे लगते होंगे, ये विचार करके घर में रोती थी वो। मतलब हाथ लगाया ना उनको तो हाथ लगता है कि मक्खन को इधर हाथ लगा रहे हैं, मक्खन के गोले को पकड़ रहे हैं, पैर को हाथ लगाए लगा मक्खन के गोले को हाथ लगा रहे हैं, इतने मुलायम उनके कोमल चरण कमल। हाँ, ऐसे ऐसे 10 बार भी कदम लगाएंगे तो लगेगा गुलाबी आ रहे हैं हमारे पर फूल, लेकिन वही चरण कमल जो कालिया के ऊपर गिर रहे हैं, वज्राघात हो रहा है उसके ऊपर, प्राणांतिक वेदना हो रही है उसको, और हर एक थन के फन के ऊपर से खून और विष बाहर निकल रहा है, और वो ऐसा मलूल हो रहा है, मतलब पहले दुर्बल होते जा रहा है। और कालिया के लिए तो वज्राघात है, लेकिन देखने वाले के लिए नृत्य है वो, यहाँ से वहाँ, इस फन से उस फन पर, उस फन से उस फन पर बंसी बजाते हुए कभी नाचते हुए जा रहे हैं, और गोपियां देख रहे हैं। हाँ, ये तो अद्भुत नृत्य है, ये तो गजब का नृत्य है, पहले कभी देखा नहीं है। सब लोग जमीन पर नाच करते हैं, तो कालिया के थन फन पे नाच कर रहा है, वो भी जल के अंदर। तो बहुत देर तक गोपियों को रिझाया, ग्वाल बालों ने बड़ा आनंद लिया, उनकी चिंता दूर हो गई कि कालिया एक एक थन से भी शुगल रहा है और नम्र होते जा रहा है। आखिर में इतना भगवान ने उसको लत्ता प्रहार किया अपने पैर से, सारे फनों से सारा विष निकल गया वो, और जो भी उसको अहम था, जो भी उसके अंदर द्वेष था, वो सब इस विष के वजह से था। जैसे विष निकल गया तो कालिया का मन शुद्ध हो गया, मति शुद्ध हो गई उसकी, विष के जाते ही हुए कालिया शुद्ध हो गया और नम्र हो गया एकदम। भगवान उसका वध करने वाले थे, तभी उसकी सब पत्नियां जो है ना, नाग पत्नियां, वो भाग भाग के आई बच्चों को लेकर। उन्होंने कहा, ये भगवान हमारे पति को मत मारो, हम जानते हैं बड़ा पापी है ये, इतने बड़े पाप किए हैं, ये बड़ा विद्रोही है, बहुत समय से ये ऐसा है, लेकिन हमारा पति है और हम आपकी भक्त हैं, हम आपका पूजन करती हैं, हम आपका नाम लेती हैं, हम आपको पुकारती हैं, इसलिए हमें आप अनाथ मत बनाओ, इनको माफ़ कर दो। तो उसको मारने वाले थे, लेकिन भगवान ने उसको नहीं मारा। बच क्यों गया वो? क्योंकि पत्नी भक्त थी उसकी, पत्नियां भक्त थी उनकी। जब भक्त पत्नियों ने भगवान से याचना किया, भगवान ने थोड़ा छोड़ दो इसको, मत मारो। भक्त का होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। हाँ, भक्त का होने से कई चीजें बदल जाती है, जो होनी है वो टल जाती है। मरना था उसको वैसे, भगवान ने तो पूरा ही उसका क्या कहते हैं उसको, पूरा निर्बल कर दिया था उसको, पूरा सब कुछ खत्म कर दिया उसको, वो मरने वाला था वो, लेकिन भक्त के प्रार्थना करने से बच गया वो। इसलिए क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि हमारे परिवार में एक ना एक भक्त होना चाहिए। हम समझो कुछ गलती भी करके बैठे, वो एक भक्त के होने की वजह से भगवान हमको माफ कर देंगे। प्रहलाद जी को क्या कहा था, अरे तुम अकेले नहीं, तुम्हारी 21 पीढ़ी को उधारूंगा मैं। तुम क्या कह रहे हो कि मेरे पिता को बचाओ, वे बड़े पापी थे वगैरह वगैरह, इसको इनको नरक में मत भेजो, इनको माफ कर दो। तो उन्होंने कहा, इनके माफ करने का सवाल ही उठता नहीं है, ये आपके पिताजी है, ये प्रहलाद आपके पिताजी है, इसलिए आपके पिताजी होने से ही ये पहले से पाप मुक्त है, इनको मैंने पहले ही माफ कर दिया है। और ध्यान से सुनो प्रहलाद, वो कह रहे हैं कि आपके ये पीढ़ी आपकी है, आपकी अगली पीढ़ी पिताजी की है ना, अगली पीढ़ी हिरण्यकश्यप की है, लेकिन उसकी आगे की 9 पीढ़ी जो खत्म हो चुकी है, और तुम्हारी पीढ़ी की आने वाली 10 पीढ़ी, कितने हो गए टोटल, 21 पीढ़ी हो गई तुम्हारी एक, और आगे पीछे 10 10, ये 21 पीढ़ी में जो भी आएंगे वो तुम्हारे इस वंश में आने की वजह से ये सबका उद्धार हो गया है और होते रहेगा। इसलिए भगवान ने बलि का वध नहीं किया, क्योंकि बलि प्रहलाद का ग्रैंड सन था ना, प्रहलाद के पुत्र का पुत्र था वो, उधर बामन बन के आए भगवान, वही भगवान है वो, बामन बनकर आए, लेकिन उसका वध नहीं किया, उसका गर्व हरण किया खाली, इनफैक्ट मतलब वास्तविक रूप में बहुत कृपा किया उस पर। ऐसे भगवान कभी वचन को भूलते नहीं है वो। तो ये नाग पत्नियों की प्रार्थना की वजह से कालिया बच गया, और जब विष खत्म हो गया पूरा उसका भगवान के दया से, तो भगवान ने कहा चले जाओ यहाँ से, ये तुम्हारे विष की वजह से यहाँ ब्रजवासियों का जीवन बहुत कष्ट में आ गया है, तुम जब जाओगे तो ये विष हम नष्ट कर देंगे। तो काली ने कहा कि अरे जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा गरुड़ जी मुझ पर हमला करेंगे, तो मैं तो छुप गया हूँ यहाँ पर, तो मेरा जीवन का क्या होगा। अरे तुम अभी तक तुम्हारे सर पे क्या है तुमने देखा नहीं, जब मैं नाच रहा था तुम्हारे सर पे, तो तुम्हारे सर पे हर एक फन पे मेरे चरण चिन्ह निकले हुए हैं, वो चरण चिन्ह पर दिव्य चिन्ह है, हर प्रकार के मछली है, अंकुश है, गदा है, शंख है, चक्र है, सब प्रकार के चिन्ह मेरे चरणों के चिन्हों के साथ, मेरे चरण चिन्ह जो है इन सब दिव्य चिन्हों के साथ में आपके शीश पर विराजमान है, जो दिव्य प्रकाशित है, देखा ना आपने, तब प्रकाश निकल रहा था उस, जैसे कि मानो मणि हो कोई, वो चरण चिन्ह है उनके, जैसे मेरा भक्त गरुड़ तुम्हारे सर पे इस चरण चिन्ह का दर्शन करेगा, वो तुमको वंदन करेगा, तुमको मारने का सवाल ही उठता नहीं है, तुमको वंदन करेगा और तुम्हारा मित्र बनेगा। फिर वो अभय भगवान ने जब दिया, जब भगवान ने अभय दिया तो कालिया इत्मीनान से काली देह से बाहर निकला, और एक देश है इसका नाम है फिजी, फिजी हाँ, तो वहाँ जाके बस गया वो। आज भी उस देश में काली की वैष्णव के रूप में पूजा करते हैं, प्रमुख मंदिर जो है, जैसे यहाँ के प्रमुख देवता राधा कृष्ण हैं, वैसे फिजी में प्रमुख देवता कालिया है, लेकिन वो कालिया राक्षस नहीं है, कालिया भक्त है वो, जो भक्त बन के यहाँ से गया। राज भी फिजी में भारतीय वंश के लोग रहते हैं, और वो कालिया का भक्त के रूप में वैष्णव के रूप में भजन करते हैं। तो ये जो काली धाय आपके पास बहुत पास में यहाँ पर है, रिक्शा से 5 मिनट, चल के 10 मिनट, इतना पास में है। और वो जो पेड़ है काली का, आपने शायद देखा कि नहीं पता नहीं, उसमें वो अमृत कलश भी है, उसके अंदर है, किसने देखा होगा नहीं पता नहीं, आप देख लो जरूर, जो गरुड़ ने अमृत रखा था ना, अमृत कलश, वो कलश जो है वो लकड़ी में बना हुआ है, और वो पेड़ के अंदर ही है, मतलब किसी ने बनाया नहीं उसको काट पुट के, ऐसे ही है, स्वयं प्रकट है वो। और वो पेड़ की ऐसी महिमा है, वो कल्प वृक्ष है, दिव्य वृक्ष है वो, किसी की कामना को पूरा कर सकता है वो। उसके अंदर आप झांक के देखोगे ना, अंदर पूरा खोखला है वो, पूरा खोखला है, उसके अंदर है ही नहीं कुछ, कुछ जान ही नहीं उसके अंदर, किसी भी छेद में देखोगे अंदर पूरा खोखला है वो। और कोई खोखला होने वाला वृक्ष जो है वो फलता फूलता नहीं है उसमें, लेकिन ये सदाबहार वृक्ष है, उसके अंदर अनंत पत्ते हैं, और ऐसा इस दिशा में उस दिशा में दिव्य रूप में फैला हुआ है। आप कदम का पेड़ लगाओगे तो ऐसा नहीं फैलेगा वो, जिस प्रकार से वो काली देह का वृक्ष फैला हुआ है। ये सब अद्भुत बातें हैं भगवान की। फिर हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ये जो कालिया है ये द्वेष का प्रतीक है ना, ईर्ष्या, अरे इन पे हमसे ज़्यादा पैसा है, अरे ये तो इनकी लड़की हमसे ज़्यादा अच्छी जगह ब्याही हुई है, और इनका बच्चा पढ़ रहा है, इनके पास गाड़ी है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, इनकी ये बहुत बहू सुंदर है इनकी, हमारी बहू नहीं सुंदर है, ऐसे कई प्रकार की ईर्ष्याएँ होती है, अरे इनकी ज़मीन हमारे ज़्यादा है, हमारी ज़मीन इतनी नहीं है, इनकी उपजा हुआ है हमारी बंजर है, हाँ बहुत प्रकार के वे द्वेष करते हैं लोग। और हमको पता होना चाहिए, हमारे आचार्य बताते हैं कि ये द्वेष जो है इसी की वजह से हम लोग यहाँ पर हैं, यही कारण है कि हम अभी ये शरीर, मरने वाला शरीर, बीमार होने वाला शरीर, पीड़ा देने वाला शरीर जो है उसको लेकर यहाँ जन्म लिया हुआ है और भेड़ा भोग रहे हैं। इसकी जड़ क्या है, इसकी जड़ द्वेष है, और जड़ किसका द्वेष, ठाकुर जी का ही द्वेष करके हम लोग यहाँ पर आए हैं। ठाकुर जी का राज हमको पसंद नहीं है, हम अपना अपना राज करना चाहते हैं। ये मूलभूत है, अभी तो वो भूल भी गए हम लोग कि हम लोग क्यों आए यहाँ पर, लेकिन मूल कारण उसका है कि ठाकुर जी का भी हम द्वेष करते हैं। जितना इंद्रिय भोग करते हैं, जितना यहाँ पर भोग लेने का प्रयास करते हैं, उतना ठाकुर से द्वेष करते हैं। ठाकुर जी का जो हक है भोग लेने का, वो हम लेना चाहते हैं, हम भोगना चाहते हैं उसको। ये ठाकुर जी का द्वेष है, और काली उसका प्रतीक है वो द्वेष का। जब हमारे बल पे हमारे अंदर जो द्वेष है, ईर्ष्या है, वो हम नहीं निकाल सकते हैं, उसको हम निकाल के बाहर नहीं फेंक सकते हैं। वो कोई गोली नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं, कभी ऑपरेशन करके इसको फेंक दो बाहर निकाल के, ये गोला निकाल दो, ऐसा नहीं होता है। वो ठाकुर जी जब स्वयं कृपा करेंगे, ठाकुर जी को लगेगा अच्छा है अभी सुधर गया है जीव, पश्चाताप भी कर रहा है, और कोई भक्त सिफारिश कर रहा है उसकी, तो ठाकुर जी करेंगे। ठाकुर जी शुद्ध तो कर लिया उसको, लेकिन मारने वाले थे उसको, बच कैसे गया? भक्तों ने, मतलब पत्नियों ने, जो भक्त थी भगवान की, भजन करने वाली थी वो, उनके याचना से बच गया वो। उसी तरह से हम भी अगर किसी भक्त के सहारे हो, किसी गुरु के, किसी स्वामी के, किसी वैष्णव के हम शरणागत हों और वो हमारी सिफारिश करते हैं, तो ये द्वेष का रोग जो है वो नष्ट हो सकता है, तो जो काली देह जो है विष से भरा हुआ है वो साफ हो सकता है। ऐसे कहते हैं कि भगवान ने पांचों महाभूतों को स्वयं स्वच्छ किया है, तृणावर्त के रूप में उन्होंने वायु शुद्ध कर दिया। हाँ, मृदभक्षण मानी मट्टी खाना खाया ना भगवान ने, तो पृथ्वी तत्व को शुद्ध कर दिया उन्होंने। व्योमासुर को मार के उन्होंने अवकाश तत्व को शुद्ध कर दिया, और काली को दमन करके जल तत्व को शुद्ध कर दिया उन्होंने। और कौन सा बच गया? पांचवा आकाश भी हो गया, और अग्नि भक्षण करके दावानल पे और उधर भांडीर वन पे प्रलंबासुर को मारने के बाद में अग्नि भक्षण किया ना, तो अग्नि तत्व को शुद्ध कर दिया उन्होंने। देखो, पांचों तत्व को भगवान ने शुद्ध किया है। पर्यावरण के सबसे पहले नेता तो भगवान खुद है। तो हमारा हृदय भी वो काली देह की तरह है, इस द्वेष के विष से भरा हुआ है। हाँ, लेकिन जब ठाकुर जी अंदर नाच करते हैं, तो ये विष से भरा हुआ देह जो है वो साफ हो सकता है, और हम लोग बच सकते हैं। और ठाकुर जी को कैसे बुलाना है? ठाकुर जी तो नित्य करने वाले ना, नटराज है वो, नित्य गोपाल। उनके चरण में भी उधर नंदगांव जाएंगे ना, नित्य गोपाल की विग्रह है, चरण में कमल है उनके, दोनों चरण में कमल है। वहीं पर नंदगांव के गोसाइयों की सब दीक्षा होती है, ब्राह्मण दीक्षा, हाँ, उपनयन संस्कार वही होता है। तो जो नित्य गोपाल है वो सदैव आपके हृदय के आंगन में नाचने को तैयार है वो। आप बुलाएंगे उनको तो आएंगे, और हमारे हृदय में नृत्य करेंगे। और कैसे बुलाना है उनको? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे हम लोग इसको पुकारते हैं ना, वैसे हमारे हृदय के आंगन में ठाकुर जी नाच करते हैं, नृत्य करते हैं, जिह्वा पर नृत्य करते हैं, हृदय के आंगन पर नृत्य करते हैं वो। जैसे वो नृत्य करते हैं, सब साफ हो जाता है, सब शुद्ध हो जाता है, सारी ईर्ष्या काम क्रोध मद मोह मत्सर सब निकल जाता है, और तब व्यक्ति जो है भगवान को मिलने लायक हो जाता है। भगवान ही करते हैं सब, हमको केवल यस सर बोलना है उनको। अभी तक नो सर बोल रहे हैं, वो कुछ पुकारते हैं नो सर, नहीं, विद्रोह कर रहे हैं हम लोग, मना कर रहे हैं उसको। हाँ करना शुरू किया तो नृत्य करना शुरू हो जाता है, और हाँ किया नृत्य किया सब शुद्ध हो जाता है। और ठाकुर जी जो है, जो वज्राघात के समान नजर आ रहे हैं, वो एकदम फूल की तरह नजर आएंगे, है ना। जब तक पाप है द्वेष है, तब तक उनका जो मक्खन जैसा चरण है ना, वो वज्राघात है हमारे लिए। और गोपियों के दिन में प्रेम है, तो वो पाँव जो है वो मक्खन के जैसा है, मुलायम एकदम, ऐसा लगेगा कि यहाँ उंगली लगाऊँ तो लाल हो जाएगा, यहाँ पर दबाऊंगे तो ये लाल हो जाएगा, इतना कोमल है उनका। हाथ लगाने पर भी वो लगता है कि कितना कोमल है, इतना दर्द होगा इनको, सोच सोच के रो रही है, क्योंकि प्रेम है ना उनके लिए। और वही मक्खन जैसा पैर जो है, वो राक्षस जो पापी होते हैं ना, उनके लिए वज्राघात के समान है। यही हमारे जीवन का रहस्य है। जब यस सर बोलेंगे उनको, हाँ बोलेंगे तो मक्खन बन जाएगा, ना बोलेंगे तो वज्र बन जाएगा। क्या चाहिए आपको? चुनौती आपको करनी है, चुनना आपको है, हम सबको है। तो जो उनको पुकारते हैं प्रेम से, भले कितना भी विष अंदर हो, कि सबके अंदर विष है, भी क्या काम है, क्रोध है, लोभ है, ये चाहिए वो चाहिए, इनसे ईर्ष्या उनसे ईर्ष्या, मोह में ग्रस्त है, अपने आप को शरीर मानते हैं, क्या क्या करते हैं हम लोग। लेकिन जब उनको स्वीकार कर लेते हैं तो सब नष्ट हो जाता है, और जीवन जो बचा हुआ है, दर्द में हो या ना हो, हम परे चले जाते हैं उसके। दर्द तो शरीर को है, पीड़ा तो शरीर को है, आत्माओं को पीड़ा नहीं होती है। जब आत्मा भगवान से प्रेम से मिल जाती है तो ये सब पीड़ा होते हुए भी पीड़ा के ऊपर उड़ जाते हैं हम लोग, है ना। जैसे हम लोग जब हवाई जहाज में जाते हैं ना, तो हवाई जहाज जब उड़ता है तो बादल से गुजरता है, वो बहुत बादल है वर्षा वाले, अरे सब बोल रहे अच्छा पट्टा बांध के रखो, बादल में जा रहा है, हिल रहा है हवाई जहाज। उसके बाद में वो बादलों को क्रॉस करता है और बादल के ऊपर चला जाता है, बादल के भी ऊपर चला जाता है, और हम लोग हवाई जहाज बैठ के नीचे देखते हैं, नीचे बादल है। इसका मतलब क्या, बादल अपनी जगह पर है, हम कहाँ आ गए, बादल के ऊपर आ गए। जब बादल के नीचे थे तो वर्षा हो रही थी, गीले हो रहे थे, जब बादल के ऊपर आ गए, बादल अभी भी वर्षा कर रहे हैं लेकिन हम बादल के ऊपर हैं, अभी वर्षा नहीं हो रही हमारे ऊपर। वैसे ही शरीर में दर्द है हमारे, कष्ट है, पीड़ा है, कौटुंबिक दर्द है, पारिवारिक दर्द है, शरीर का दर्द है, मन का दर्द है, भावना से दर्द है। लेकिन जब आत्मा के स्तर पर आ जाते हैं, भगवान का नाम पुकार कर, आत्मा का सर ये सबके ऊपर है, जैसे बादल के ऊपर हवाई जहाज है, वैसे हम सब लोग आत्मा के स्तर पर आते हैं तो वहाँ पर तो आनंद ही आनंद है केवल। तो इसलिए दुख दर्द को मिटाने का वादा कोई नहीं कर सकता है, दुख दर्द के ऊपर उठने का वादा हो सकता है ना। वृंदावन में भी शांति का वादा कोई नहीं करता है, पता है आपको, वृंदावन में शांति थी क्या, शांति है क्या, अरे गाय चराने गया तो काली आ गया, अरे गाय चराने गया तो अरिष्टासुर आ गया, अरे गाय चराने गया इंद्र ने वर्षा कर दिया, शांति नहीं है लेकिन आनंद बहुत है। भगवान यहाँ पर शांति का वादा नहीं करते, ओम शांति उसका वादा नहीं करते, भगवान आनंद का वादा जरूर करते हैं, मतलब कितना भी दुख हो आनंद जरूर दूंगा आपको। हाँ, कालिया के रूप में कितना टेंशन दिया उन्होंने, कितना परेशानी दिया, लेकिन उसके बाद में क्या देखा, अद्भुत गजब का नृत्य देखा सब लोगों ने, मौत के मुंह में गया हुआ है लेकिन अभी गजब का नृत्य कर रहा है, डांस कर रहा है, सबको आनंद दिया है ना। वैसा ही हमारा जीवन है, हम भी अगर ठाकुर से अगर शरणागत रहेंगे तो हम भी वो हवाई जहाज की तरह रहेंगे जो बादल के ऊपर रहेगा, दुख दर्द के परे रहेगा। भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है, भगवान का नाम जपेंगे तो बड़ी से बड़ी पीड़ा से भी हम बाहर निकल सकते हैं। पीड़ा तो वही रहेगी, पीड़ा हम लोग ये वादा नहीं कर रहे हैं कि पीड़ा खत्म हो जाएगी, पीड़ा रहेगी, कम होगी, थोड़ी बहुत ज़्यादा होगा, पीड़ा समाप्त नहीं होगी, पीड़ा अपनी जगह पर रहेगी, हम पीड़ा को छोड़कर ऊपर चले जाएंगे, ऊपर के स्तर पर जाएंगे। यही कालिया के लीला का हमारे लिए शिक्षा है। जाते उधर हमेशा चलते चलते तो यही प्रार्थना करते हैं काली देह पर खड़े होकर कि ये भगवान हमारे अंदर जो ये द्वेष का विष है उसे आप निकाल दो। हाँ, और जैसे काली के विष वाले फन में विष निकाल कर आपने अपने चरणों का चिन्ह रख दिया, वैसे हमारे ऊपर भी आपका चरणों का चिन्ह रख दो, तभी हम भी निर्भय हो जाएं। मौत से डरते हैं हम, हाँ, कितनी अपमान से डरते हैं, धन की राशि लूट जाएंगी इससे डरते हैं, ये सब डर निकल जाता है और व्यक्ति जो है वो निर्भय हो जाता है। जैसे कालिया विष के धन फन से भरा हुआ था, खाली हो गया, भगवान के चरण चिन्ह आ गए, गरुड़ के भय से मुक्त हो गया, मृत्यु के भय से मुक्त हो गया वो। गरुड़ जो उसको मार सकता था उसने मारना भी छोड़ दिया उसको। जो भगवान का स्टैंप लगा हुआ है जिसके ऊपर, ये क्या है हमारे ऊपर इधर स्टैंप लगा है ना, स्टैंप, ये स्टैंप जब होता है ना तो यमदूत भी पास में आ सकता है हमारे। ये तुलसी जो गले में पहन रखी है ना, ये हमारा कुत्ते का पट्टा है ये। हाँ, ये कुत्ते का पट्टा होता है ना, जिसके गले में पट्टा होता है उसको गाड़ी आके पकड़ के ले जा सकती नहीं, जो कुत्ता बिना पट्टे का होता है उसको गाड़ी आके उठा के ले जाती, हमारे मुंबई में ऐसे होता है, उसको बेकार मतलब रस्ते के कुत्ते बोलते हैं, वो बिना पट्टे वाले होते हैं, उनको म्यूनसिपालिटी की गाड़ी आती है उठा के ले जाती, लेकिन जो पट्टे वाला होता है उसको नहीं उठाते, वो समझते हैं ना कि इसका कोई मालिक है, किसका प्रॉपर्टी है ये। उस तरह से यही गले में जिसके होता है ना, इसका नियम पालन करने के बाद जो पहनता है, ये यमदूत की गाड़ी जब आती है ना तो इनको नहीं उठा दियो। जो इसके बिना घूम रहे ना, भगवान के शरण के बिना घूम रहे, वो सबको उठा के हम लोग ले जाते हो। और हम लोग के ऊपर स्टैंप लगा हुआ है, ये भगवान के पैर का स्टैंप है, पता है आपको इसका क्या कारण है, ये भगवान का चरण चिन्ह है, जैसे काली के ऊपर भगवान ने दिया था, ये भगवान का चरण का स्टैंप है ये, मतलब बड़े गर्व से और बड़े प्रेम से उसको लगाते अपने सर पर, ताकि यमदूत भी देखे दूर से कि ये स्टैंप लगा हुआ है, इसके पास जाना नहीं है। हा? यमराज ने उसको वार्निंग देकर रखा है, चेतावनी देकर रखी है, कभी भी वहां नहीं जाना जहां भगवान का नाम कोई ले रहा है, या भगवान का भजन कर रहा है, या भगवान के शरण में है, भगवान का कीर्तन हो रहा है, वहां कोई काम नहीं आपका, दूर दूर तक काम नहीं है। यहां बोल रहा है 10 फीट के आगे आवाज आ रही है, 10 फीट के आगे भी आपको आना नहीं है। बहुत बड़ा भागवत में दिया है भगवान ने, सुखदेव जी वर्णन करते हैं। यमराज को जाके सवाल करते हैं यमदूत, अरे ये भाई ऐसा कैसे हो गया, हमको उठाने नहीं दिया उसको अजामिल को, हम तुम नहीं उठा सकते उसको, जो भगवान का नाम पुकारता है वहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, वहां चले जाओ जहां भगवान का नाम नहीं पुकारते कोई, वहां से लोगों को उठाओ, हमारे पास आके दंड देंगे उनको। तो हम भी कालिया की तरह है, लेकिन भगवान की दया से ही अभी स्टैंप हमने लगा दिया है। ये स्टैंप जो है वो केवल 2 पैसे का तिलक लेकर लगाने का काम नहीं है, ये जो है ये लगाने के लिए तैयार होना पड़ता है पहले। सब लोग लगाएंगे तो उसमें से भी उठा के लेके जाएंगे वो। तो भी कुछ लोग क्या करते हैं, कॉलेज वाले लड़के लड़कियाँ होते हैं ना, वो भी 25 रुपये की ये तुला तुलसी की माला खरीद लेते हैं और पहनने लगते हैं, बोला अच्छा फैशन है, अच्छा दिखता है, गले में चिपका हुआ बड़ा बढ़िया दिखता है। उनको जरूर उठा के लेके जाएंगे तुलसी माला होने के बाद भी, क्योंकि तुलसी माला और ये तिलक कब पहनना चाहिए, जब सारे नियम पालन करते हैं, भगवान के नाम का भजन करते हैं, रोज नियम से पाठ करते हैं, उनके लिए जब लगेगा योग्य तो वो बोलते सर्टिफिकेट है, नकली फर्जी ला के देगा मेरे को, अपने रेशन कार्ड पे नाम तो मिलेगा क्या आपको अनाज, नहीं बोलेगा ये फर्जी है, आपको चीटिंग नहीं कर सकते आप, ये नकली माल नहीं यूज़ करेंगे। असली पासपोर्ट है क्या आपके पास, असली राशन कार्ड है, असली रजिस्ट्री है क्या आपकी, तो ये आपको मिलेगा, वो नकली पे नहीं मिलेगा। तो जो बिना नियम पालन करके लगाते हैं वो फर्जी है पूरे, लेकिन नियम पालन करके जो स्टैंप लगाते हैं भगवान के तिलक का, भगवान यमदूत बड़े होशियार होते हैं, उनको आप चीटिंग नहीं कर सकते हैं फर्जी माल दिखा के। यमदूत बड़े ट्रेनिंग लेकर आते हैं वो, उनके पास बहुत बड़ा वारंट होता है, वारंट, उनका वारंट कोई टाल नहीं सकता है। हाँ बड़ा, यहाँ से भी लोगों उठा ले जाते हो। कहने का मतलब यह है कि हम लोग भी कालिया की तरह द्वेष करने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे ऊपर अभी हमने ये तय कर लिया कि भगवान के शरण लेंगे, अभी हम भगवान का चरण कमल अपने सर पे रखेंगे, गले में तुलसी माला रखेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, केवल प्रसाद खाएंगे, उन्हें भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाएंगे, सुबह उठकर उनके नाम का जप करेंगे, जितने हो सके उनके नाम की सेवा करेंगे, उनके भक्तों की सेवा करेंगे, उनमें से एक भक्त का आश्रय लेंगे, गुरु के रूप में उनके आदेश का पालन करेंगे, वैष्णवों की सेवा करेंगे। ये जीवन जब होता है तब ये स्टैंप उनको दिखाई पड़ता है, ये जीवन ऐसा नहीं होगा तो उनको वो स्टैंप दिखाई नहीं पड़ता है। स्टैंप दिखाई पड़ना चाहिए, स्टिकर इसमें लाइट पावर होना चाहिए, तो वो यम नियम पालन सब उनको करना पड़ेगा, तब ये काली देह को काली भगवान ने कैसे दमन किया और उसको मुक्त कर दिया, वैसे हम भी भगवान के चरण में मुक्त हो जाएंगे, आनंद का जीवन जिएंगे। जब तक यहाँ जी रहे हैं तब तक आनंद का जीवन जिएंगे, जब जाना होगा तो आनंद के धाम में चले जाएंगे। बोलो काली देवन भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, जमुना मैया की, गरुड़ देव की, श्री वृंदावन धाम की, जय हो।